डिस्प्ले करेगा आपने तो अंदर समझ लिया।
ओम नमः सितेभ्य, ओम नमः सितेभ्य, ओम नमः सितेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वर्छायाणं, नमो लोए सवसाहूणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं, कर्मभूवृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी ने लिखा हुआ ये जो तत्वार सूत्र ग्रंथ है उसके दूसरा अध्याय और सूत्र 8 पर हम आए हैं। 195 पृष्ठ है, 195। 8वें सूत्र की टीका हम पढ़ रहे थे। 8वें सूत्र में जीव का लक्षण बताया है, क्योंकि अनेक मिले जुले पदार्थों में किसी पदार्थ को हमें भिन्न पहचानना है तो वो लक्षणों के द्वारा पहचाना जाता है। हमें अपने आप को पहचानना है। अनादि से हमने क्या भूल कर दी कि जीव और कर्म अनादि से ही बंधी हुई अवस्था में पाया जाता है और कर्म के फलस्वरूप यहां शरीर आदि की रचना होती है। तो जीव तो अमूर्तिक है, अरूपी है, दिखाई नहीं देता है, और जो मूर्तिक शरीर है वही दिखाई देता है। और जीव की ऐसी ही सहज भूल हो जाती है कि यह शरीर ही मैं हूं, ऐसा वह मानता है, और ये शरीर के अनुकूल जो अन्य पदार्थ है वो मेरे है, वो मेरे लिए अच्छे है या बुरे है, इस तरह से उसके राग द्वेष की परंपरा चलती है। नए नए कर्म बनते रहते हैं और फिर उसका उदय में जीव वही वही बात दोहराते रहता है। इस तरह अनादि से इस जीव ने अनंतानंत भव किए हैं और ये जन्म मरण उसका चल रहा है। इसीलिए करने जैसी एक ही बात है कि उसको अपना स्वरूप पहचानना है। तो यहाँ शरीर है तो हमें अपने आप को कैसे पहचाने, तो यहाँ जीव का लक्षण बताया कि उपयोगो लक्षण। जीव का लक्षण उपयोग है। ये उपयोग है ना, क्या कोई चीज हमें उपयोगी है, वो उपयोग की यहाँ बात नहीं है। उपयोग करना, यूज करना, उसकी बात नहीं है। उपयोग यानी ये जो ज्ञान दर्शन है, चैतन्य गुण का जो वहां परिणमन चलता है, वो व्यापार चलता है, उसके जो क्रिया चलती है, जानन देखन की क्रिया, उसको उपयोग कहा है। यानी ये उपयोग का ही दूसरा नाम है ज्ञान और दर्शन। कल हमने 195 पृष्ठ पर थोड़ी टीका पढ़ी थी, वहां जो दूसरा बड़ा पैराग्राफ है उसको देखते हैं। देखो क्या कहते हैं वहां पर। जीव और पुद्गल का अनादि काल से एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध है। आपने सभी ने अभी संबंधों के तीन प्रकार हमने यहाँ देखे थे ना, कौन कौन से अंजुबेन? एक क्षेत्रावगाह संबंध,
नित्य तादात्म्य संबंध,
बहुत अच्छा, हाँ, नित्य तादात्म्य संबंध और अनित्य तादात्म्य संबंध। तो एक क्षेत्रावगाह संबंध का अर्थ क्या है, एक ही स्पेस में अलग अलग स्पेस यानी क्षेत्र, यहाँ पर अलग अलग द्रव्य एक दूसरे को अवगाहना दे के सुपर इम्पोज होकर रहते हैं, तो उसको कहते हैं एक क्षेत्रावगाह संबंध। एक ही क्षेत्र में दोनों की अवगाहना होती है। तो ये पुद्गल भी वहीं पर रहता है जहां जीव रहता है। आकाश के इतने प्रदेशों में जीव भी रहता है और पुद्गल भी रहता है। वहां धर्म द्रव्य के भी प्रदेश है, अधर्म द्रव्य के भी प्रदेश है, आकाश द्रव्य तो स्वयं है ही है, और वहां कालाणु यानी काल द्रव्य भी है, परंतु अन्य द्रव्य तो अरूपी है, इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आते। तो इस जीव ने पुद्गल में और अपने में एक में खिचड़ी करके वो पुद्गल ही मैं हूं माना। तो जीव और पुद्गल कहा तो है दो ही द्रव्यों को यहां एक क्षेत्रावगाह, परंतु है तो छह द्रव्य यहां एक क्षेत्रावगाह रूप से रह रहे हैं, उसमें से पुद्गल की बात उठाई है। जीव और पुद्गल का कब से है ये संबंध? तो कहते अनादिकाल से, क्योंकि कर्मों से रहित यह जीव कभी हुआ ही नहीं था। जिस क्षेत्र में मैं स्वयं जीव हूँ उसी क्षेत्र में अनंत कर्म पुद्गल परमाणु है और उसी क्षेत्र में शरीर के भी अनंत परमाणु है। तो अनादिकाल से ही इसका एक क्षेत्रावगाह संबंध है। 195 पेज आपके पास है ना, सेकंड पैराग्राफ। इसलिए अज्ञान दशा में वे दोनों एक रूप भाषित होते हैं। क्या कहा है? किसको एक रूप भाषित हो रहे? अज्ञान दशा, जीव की दशा है अज्ञान। जब हम अज्ञानी जीव कहते हैं वो दशा की अपेक्षा जीव को ही अज्ञानी कह देते हैं, परंतु अज्ञान यह दशा है और वो दशा मिटकर ज्ञान दशा हो सकती है। अज्ञानी जीव ही अज्ञान मिटकर ज्ञानी होता है। अज्ञान दशा में उसको ये एक में एक भाषित होते हैं और ज्ञान होने पर, आत्मज्ञान होने पर ये भिन्न भाषित होने लगते हैं। हम स्वयं प्रत्यक्ष भिन्न है उसको ये ऐसा समझ में आता है, ज्ञान में आता है, उसको भाषित होता है। तो अज्ञान दशा में वे दोनों कौन, जीव और पुद्गल, एक में एक भाषित होते हैं, एक रूप भाषित होते हैं, उनमें से वो भिन्न नहीं कर सकता है। जीव और पुद्गल एक आकाश क्षेत्र में होने पर भी, एक ही आकाश क्षेत्र, जैसे अभी हम देखते हैं जहां अभी ये लकड़ी है ना, उसने कितना आकाश क्षेत्र व्यापा है। जो लकड़ी का हमें देख रहा है इतना आकाश क्षेत्र में ये लकड़ी है। हम मान लेते हैं अभी तो ये लकड़ी है, इसमें कोई जीव नहीं है, हम मानने के लिए मान लेते हैं तो ये कोई जीव होगा, तो ये उसका शरीर हमें दिखाई देता है। तो शरीर तो इतने स्पेस में है ही है, वो जीव भी इतने स्पेस में है, जो धारण करता है शरीर, जो धारण किया है हमने, यहां जो शरीर धारण किया है, यहां मैं एक जीव हूं और शरीर के अनंतानंत परमाणु है और वे दोनों एक ही आकाश के क्षेत्र में स्थित है। यानी वो एक क्षेत्र में रहने पर भी यदि उनके यथार्थ लक्षणों से निर्णय किया जाए तो, कंडीशन क्या है, तो दोनों एक ही क्षेत्र में सुपरइम्पोज एक रूप एक में कैसे दिखाई दे रहे हैं, हमें उसको भिन्न पहचानना है। पहले में पहले उसको भिन्न पहचानना, इकट्ठे रहे तो कोई दोष नहीं है, हम उसको भिन्न कर ही नहीं सकते, वो जब होगे तब सिद्ध दशा प्राप्त होगी। तो अभी इस अवस्था में वो एक में एक दिख रहे हैं तो क्या करना है, उनके लक्षण जानेंगे तो जीव का लक्षण जुदा है और पुद्गल का लक्षण जुदा है, तो उन दोनों को यथार्थ लक्षणों से निर्णय करना है। अब तक हमने क्या निर्णय किया था, यही मैं हूं, तो मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं ठिंगना हूं, फिर इसमें रोग हो गया तो मैं रोगी हो गया, अभी मुझे कैंसर हुआ मैं अभी मर जाऊंगा, और वो दुखी होते रहा। अब हमको क्या इसमें से पहचानना है कि मैं भिन्न हूं और ये भिन्न है, तो इसके लक्षण क्या है और मेरे लक्षण क्या है, जब निर्णय करेंगे तो अपनी पहचान हो जाएगी। तो यदि उनके यथार्थ लक्षणों से, यथार्थ लक्षण किसे कहना, हाँ उसका जो विशेष लक्षण है जो अन्य में नहीं हो और उसी अकेले में पाया जाए उसको यथार्थ लक्षण कहेंगे। ऐसा लक्षण चाहिए जीव का कि जो सभी जीव में तो पाया जाता है और अन्य किसी में नहीं पाया जाता, तो उसको हमने यथार्थ लक्षण कहा। तो यथार्थ लक्षणों से निर्णय किया जाए तो वे दोनों भिन्न हैं ऐसा ज्ञान होता है। हमें भिन्न करना है कि भिन्न जानना है, क्योंकि इस विश्व में छहो द्रव्य एक क्षेत्रावगाह रूप से रहते हैं, हमें तो उनको भिन्न भिन्न जानना है। हम तो कुछ करने धरने की बात पहले में पहले सोचते हैं, तो जानने के लिए क्या कितना क्या करना है, क्योंकि हमें लगता है ना हमको पुरुषार्थ करना है, तो पुरुषार्थ क्या करना है, तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसी जानना है, वैसा हम स्वयं निर्णय करना है। बहुत से मिले हुए पदार्थों में से, अभी ये जो लक्षण है ना यथार्थ लक्षण, तो लक्षण किसको कहना है, लक्षण की डेफिनेशन क्या है, तो बहुत से मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को अलग करने वाला हेतु, हेतु कहो उसका साधन कहो, ये न्याय की भाषा है। ऐसे कोई जो चीज है कि जिसके द्वारा हम उसको भिन्न पहचान सकते हैं तो उसको हेतु दिया जाता है, हेतु कहते हैं, उसको ही लक्षण कहते हैं। अनंत परमाणुओं से बना हुआ शरीर और जीव, कितने पदार्थ यहां है, ये जो दिख रहा है यहां कितने द्रव्य है, एक जीव द्रव्य है और अनंत परमाणु है, शरीर के अनंत परमाणु दिख रहे हैं और जीव द्रव्य उसमें एक मैं मनुष्य जीव जिसको अभी हम कह रहे हैं। परंतु ये मनुष्य पर्याय जब कहते हैं तो जीव तो एक है और शरीर के अनंत अनंत परमाणु हैं। तो अनंत परमाणुओं से बना हुआ शरीर और जीव, इस प्रकार बहुत से मिले हुए पदार्थ है, उनमें अनंत पुद्गल है और एक जीव है। ये अनंतों में जानने वाले कितने हैं, अनंत परमाणु में कितने परमाणु जानते हैं? हाँ नियति बेन, वो ब्रेन वाला परमाणु तो जानता होगा कि नहीं, वो पुद्गल है ना। हाँ हाँ हाँ, और ये स्पाइनल कॉर्ड के परमाणु, हाँ वो भी नहीं। हाँ, नर्व देख, कोई भी जो नर्वस सिस्टम जो पूरी कहते वो तो पुद्गल से बनी हुई, वो कुछ नहीं जानते, उसी क्षेत्र में रहने वाला जीव है वो जानने का कार्य करता है। परंतु डॉक्टरों को मालूम नहीं ना, ये बताना नहीं किसी डॉक्टर को। हाँ? अरे वो पढ़ने को आ जाए यहाँ, कोई डॉक्टर नहीं जानता, दे आर मच वरीड कि ये कुछ लाइफ नाम की कुछ चीज है, उस पर बहुत ये बायोलॉजी में सब बहुत रिसर्च चलती है, अब तक वो ढूंढ नहीं पाए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। अभी मरते हुए जीव को बिल्कुल बंद कांच की पेटी में रख दिया कि कुछ तो इसमें से निकल जाए तो उसको रोके तो सही, पर उनको मालूम नहीं ये पुद्गल का और जीव का सूक्ष्म परिणमन है, वो तो लोहे में से भी निकल जावे, वो कांच की पेटी क्या करे। यहां से सातवें नरक में जाने वाला बीच वाली सभी पृथ्वियों को सीधा जाता है नीचे, ऐसा कुछ लांग कर नहीं जाता है, बीच में पर्वत आए, यहां कोई मरा और इंडिया में जन्मने वाला है तो बीच में जो कोई पर्वत है जो कुछ है उसमें से सीधा चला जाएगा एक समय में। हाँ मालूम नहीं है ना। हाँ तो कहते हैं देखो, एक जीव है, उसे ज्ञान में अलग करने के लिए कहाँ करना है अलग, हाँ? तो आत्मघात करने पर अलग हो जाएगी कि नहीं जाएगी? क्योंकि जीव क्या समझता है, मैं बहुत दुखी हूं, कभी क्रोध के आवेश में, कभी मान के आवेश में, या कभी किसी दुख सहन नहीं होता है, बहुत बीमार हूं, तो क्या करता है, आत्मघात करता है, सुइसाइड करता है, और ऐसा समझता है कि मैं इसमें से छूट जाऊंगा। परंतु जो कर्म है उसका तो उदय आएगा ना, यहां नहीं तो आगे के भव में चलता ही रहेगा। और आत्मघात करने वाले तो नीच गति में ही चले जाते हैं, नरकों में ही चले जाते हैं, वहां तो और दुख है, जन्म से ही कितने ही रोग होते हैं शरीर में, ये तो हमने देखा है नरक के वर्णन में। तो देखो क्या कहते हैं, इसलिए उनको कैसे अलग करना है, ज्ञान में, अन्यथा हम अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो परद्रव्य है, वो हमारे अधीन नहीं है, किसी को ना हटाना है ना किसी को जुटाना है, हम तो यहां ज्ञान में उनको अलग करना है। तो ज्ञान में अलग करने के लिए यहां जीव का लक्षण बताया है, तो जीव का लक्षण उपयोग है, इस प्रकार यहां कहा है। तो प्रश्न है उपयोग का अर्थ क्या, पहले बता चुके फिर दोबारा बताएंगे। चैतन्य आत्मा का स्वभाव है, हमने जाति अपेक्षा यानी हमने क्लासिफिकेशन किया ना, तो छह प्रकार के द्रव्य हैं, एक एक प्रकार के द्रव्य कितने हैं, तो हमने देखा था जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, धर्म धर्म आकाश कितने हैं, एक एक है, और काल द्रव्य असंख्या, कितने असंख्यात, लोकाकाश में जितने प्रदेश है उतने असंख्यात, तो हम कहेंगे लोक प्रमाण असंख्यात। तो चैतन्य आत्मा का स्वभाव है, उस चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाले आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। देखो चैतन्य आत्मा का स्वभाव यानी आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञान दर्शन आदि आत्मा का स्वभाव है। तो परिणमन यानी क्या, परिणाम कहो परिणमन कहो, वो पर्याय को कहते हैं। पर्याय कैसी होती है, हमको किसी की पर्याय पहचानना है, ये किसकी पर्याय है हमें पता नहीं है। हम क्या कहते हैं, मुझे बुखार आया है ना, अभी हमको पहचानना है। तो बुखार यानी उष्ण हुआ है शरीर, तो उष्णता ये कौन से गुण की पर्याय है पता है, स्पर्श गुण की उष्णता पर्याय है। तो स्पर्श गुण किसका है, पुद्गल का, पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं। तो ये बुखार आया जब कहते हैं तो शरीर के स्पर्श गुण की उष्णता ये पर्याय हुई, उसको जाना किसने, शरीर ने ना, किसने जाना, जीव ने जाना, और क्या माना, यह मेरी अवस्था है माना, उसको जानने में कोई निषेध नहीं है, जाना है वह यहां बुखार है उसका इलाज भी करे, परंतु माना क्या, ये मेरी अवस्था है। तो घबरा गया, ज्ञान होने पर क्या होता है, अरे ये तो शरीर की अवस्था है, मैं इससे भिन्न हूं, मैं जानने वाला हूं, ऐसे होते तो कितनी निराकुलता आ जाती है। तो यहां कहते हैं ये परिणाम जो है यानी पर्याय जो है वो कैसी होती, किसी भी गुण की पर्याय वो गुण में जो है वही पर्याय में प्रकट होता है। हमको पहचानना है ना पर्याय किसकी है, कोई भी कार्य है वो किसने किया, जानने रूप कार्य हुआ, तो जानना यह कार्य किसका होगा, कौन से गुण का, तो ज्ञान गुण का जानना यह कार्य हुआ। हम जो शास्त्र में जो उदाहरण पढ़ते हैं ना, घड़ा बन गया तो घड़ा बना, या हमने रोटी बनाने की, क्योंकि अभी घड़े कहां हम देखते हैं बनाने के, रोटी बनी यह कार्य हुआ, तो रोटी बनी हमने क्या माना, मैंने बनाई। यदि वो मेरा कार्य हो तो मैं क्रोधी हूं लोभी हूं, तो रोटी भी क्रोधी और लोभी होनी चाहिए, तो रोटी यह मेरी पर्याय नहीं हो सकती। पर्याय जैसा द्रव्य या जैसा गुण है वैसी पर्याय होती है। तो मिट्टी रोटी रूप परिणमित हुई है स्वयं, हाँ सॉरी मैं घड़ा और मिट्टी दोनों हो गया, आटा आटा स्वयं रोटी रूप परिणमित हुआ है, हमेशा मिट्टी और घड़े का उदाहरण देते हैं ना, तो मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई है और आटा रोटी रूप परिणमित हुआ है, तो रोटी का कर्ता आटा है और घड़े का कर्ता मिट्टी है। तो हमें पर्याय से हम द्रव्य को भी पहचानते हैं, यहां क्या है हमको आत्मा को पहचानना है। तो आत्मा की प्रकट पर्याय क्या चल रही है अभी, जानना जानना जानना, हम जानते हैं ये बात हमारे ख्याल में आती है ना, भूख लगी है, रोना आया है, भय लगता है, ये समझता है या नहीं समझता है, ये तो हमारा ज्ञान हर समय कार्य करे, वो हमारा प्रकट लक्षण है। निगोद से लगकर सभी जीवों में ये जानना 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 कार्य चल रहा है, और वो उसके अनुभव में भी आता है, जानने रूप कार्य हर जीव के ख्याल में भी आता है। तो ये जो आत्मा का परिणाम है, पर्याय है, वो किसकी, आत्मा की है, उसके द्वारा हम आत्मा को पहचानेंगे। पर्याय के द्वारा हमको द्रव्य को पहचानना है। तो यह कहते हैं चैतन्य आत्मा का स्वभाव है, उस चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाले आत्मा के परिणाम को यानी पर्याय को उपयोग कहते हैं। उपयोग जीव का अबाधित लक्षण है, अबाधित, इस लक्षण में कोई बाधा नहीं आती, सभी जीवों में पाया जाता है, निगोद से लेकर सिद्धों तक सभी जीवों में है वो, और अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं है, इसलिए उसको क्या, यानी उसको वी कैनॉट रूल आउट, तो ये अबाधित है, उस लक्षण को कहीं भी बाधा नहीं पहुंचती। जीव की कौन सी भी पर्याय हो, चारों गति में कहीं भी घूमता हो, फिर भी जानना जानना उपयोग ये उसका अबाधित लक्षण है। अब ये आठवां जो सूत्र हमने पढ़ा था उपयोग लक्षणम, उस सूत्र का सिद्धांत कहते हैं। उस पर से हमें क्या जानना चाहिए, इन्फरेंस क्या निकालना है, तो कहते हैं मैं शरीरादि के कार्य कर सकता हूं और मैं उन्हें हिला डुला कर सकता हूं, ऐसा जो जीव मानते हैं। क्या कहते हैं, मेरा कार्य क्या है, जानना देखना आदि मेरा कार्य है, जानना है मानना है और जो कोई बातें हैं, और इसने क्या माना, शरीर का कार्य मैं कर सकता हूं। देखो मैंने हाथ को उठाया, मैंने हाथ को नीचे कर दिया, देखो मैंने जोर से बोला, देखो मैंने धीरे से बोला, बोलने का कार्य शरीर के हिलाने डुलाने का कार्य मैं करता हूं, मैं जीव हूं और शरीर का कार्य मैं करता हूं और मैं उन्हें हिला डुला सकता, ऐसा जो जीव मानते हैं। अब हमारा कहां नंबर लगता है देखना हो। वे चेतन और जड़ द्रव्य को एक रूप मानते हैं, दोनों का कार्य एक समय चल रहा है, हाथ का उठना और जीव के प्रदेशों का भी उठना चल रहा है, परंतु हम तो जानने रूप कार्य कर रहे हैं। यह मान लेते कोई सुई चुभ गई तो क्या लगता है, शरीर ही जान रहा है, ऐसा लगता है ना। ये अज्ञान अवस्था में ऐसी बातें होती है, शरीर और जीव को एकमेक एक रूप मानता है जीव, तो ये दोनों द्रव्यों को एक रूप मानते हैं। उनकी इस मिथ्या मान्यता को छुड़ाने के लिए छड़ाला में हमने कल सात तत्वों संबंधी जीव की क्या भूल होती है और फिर वो भूल कैसी कुदेवादि के द्वारा पक्की होती है, इसका बहुत विस्तार से वर्णन देखा। ये जो उसकी मिथ्या मान्यता है उसको छुड़ाने के लिए, और जीव द्रव्य जड़ से कितना भिन्न है, सर्वथा भिन्न है, उनमें कोई संबंध है ना। तो हमने पहले कहा था एक क्षेत्रावगाह संबंध होते हुए भी सर्वथा भिन्न है, क्योंकि हम न कुछ संबंध प्रस्थापित करना चाहते हैं, और ये मेरा तो है ना, मैं इसमें रहता तो हूं ना, शरीर के बिना मैं कैसा रहूंगा। तो सिद्ध भगवान शरीर के बिना जी रहे हैं कि नहीं जी रहे, आप क्या कहते हैं प्रोफेसर साहब, सिद्ध भगवान शरीर के बिना जी रहे हैं कि नहीं जी रहे?
जी रहे,
जी रहे। तो शरीर आवश्यक है ना हमको जीने के लिए, ये जीना तो जीव का स्वभाव है, जीना है ना वो ज्ञान दर्शन का व्यापार, यही जीवन है। तो जीव नाम ही ऐसा पड़ा है कि अभी तक जो अनादि से जीता आ रहा है, अभी वर्तमान में जी रहा है और अनंत काल तक जो जीता रहता है, जीवन ही जिसका स्वभाव है उसको जीव कहते हैं। तो ये कब मरेगा, जिसका नाम ही जीव है उसको मरण कैसा, और हम अभी मेरा मरण आ गया क्या करे, अभी क्या क्या करना है, अरे मैं कल मर जाऊंगा, मुझे इतना इतना कार्य करना बाकी रहे, ऐसे बहुत घबरा जाता है ना जी। क्यों? क्योंकि उसने अपने को इतना मनुष्य जितना ही माना है, मैं और शरीर मिलकर मैं मनुष्य हूं, इतना ही मेरा बस एग्जिस्टेंस है, और इस एग्जिस्टेंस के लिए मुझे सुखी होने के लिए जो कुछ आवश्यक है वो मैं करता हूं। तो 75 साल जीता हूं तो कितने 25-30 साल तो पढ़ता रहता हूं, फिर उसके बाद फिर इतना पढ़ा है इतना कमाया, फिर उसको कमाना है, फिर अभी रिटायर हो गए थोड़े भोगेंगे, और ये ऐसा ही चला जाता है काल। सब लोग इतना जियेंगे, कोई गारंटी लिख के तो मालूम नहीं, हमने कर्म कितने बांध कर आए वो तो नक्की है, जितना जीने वाला है वो नक्की है, फिर भी उसके ये अन्यथा सब प्रयत्न चलते रहते हैं। तो यहां क्या कहते हैं कि जीव द्रव्य जड़ से सर्वथा भिन्न है, यह बताने के लिए इस सूत्र में जीव का असाधारण लक्षण, असाधारण, साधारण इन्हें कॉमन, जैसे जीव में भी क्रियावती शक्ति है पुद्गल में भी है, तो उसको हम असाधारण लक्षण नहीं कहेंगे। जीव भी अमूर्तिक है और धर्म अधर्म आकाश काल भी अमूर्तिक है, उसको असाधारण लक्षण नहीं कहेंगे। तो असाधारण लक्षण जो अकेला जीव में है, अन्य किसी में भी नहीं है और सभी जीवों में है, तो ऐसा कौन सा है, असाधारण लक्षण उपयोग है, ऐसा बताया गया है। छड़ाला में हमने पढ़ा था चेतन को है उपयोग रूप, यानी उपयोग रूप ही चेतन का ये जो लक्षण है। अब कहते हैं नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य, जो लक्षण होता है वो हमेशा पाया जाता है, इसलिए नित्य कहा, उपयोग यह जीव का नित्य लक्षण है। तो नित्य उपयोग वाला जो लक्षण वाला जो जीव द्रव्य कभी भी पुद्गल द्रव्य रूप यानी शरीरादि रूप होता हुआ दिखने में नहीं आता, बाय चांस अभी अनादि से है उसके साथ कर्म लगे हुए है, या अभी हम देखते हैं नरकों में तो सागरों की और देवों में भी सागरों की आयु है, तो जीव थोड़ा पुद्गल रूप हो जावे और शरीर के थोड़े परमाणु जानने लग जावे, ऐसा होगा कि नहीं होगा, तीन काल में नहीं होता। ये मराठी में कहावत है ढवळ्या शेजारी बांधला पवळ्या, वान नहीं पण गुण लागला, यानी दो बैल है एक उसका धवड़े वो तो सफेद कलर का है और एक थोड़ा लाल कलर का है, साथ में बांधते हैं तो एक का कलर तो दूसरे को नहीं लगता परंतु थोड़ा गुण लग जाता है, यानी वो आलसी आलसी है तो दूसरा भी थोड़ा वैसा ही बिहेव करता है, यहाँ वैसे भी नहीं होता है। जीव और पुद्गल इकट्ठे एक ही क्षेत्र में रहते हुए जीव का थोड़ा गुण पुद्गल ले लिए और पुद्गल का थोड़ा सा गुण जीव ले जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो कहते हैं ये देखने में नहीं आता, शरीर आदि रूप होता हुआ देखने में नहीं था, और नित्य जड़ लक्षण वाला शरीर आदि पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य कैसा है उसमें भी लक्षण है और वो भी नित्य है। कौन सा लक्षण है उसमें? जड़ अचेतन, ये पुद्गल द्रव्य का लक्षण है। वो कभी जीव द्रव्य रूप होता हुआ देखने में नहीं आता क्योंकि उपयोग और जड़त्व के ये दो दो बिल्कुल अपोजिट पार्टीज है ना, उपयोग लक्षण कहो और एक बाजू जड़ लक्षण कहो, तो उपयोग और जड़त्व के एक रूप होने में प्रकाश और अंधकार की भांति विरोध है। जैसे प्रकाश और अंधकार एक नहीं हो सकते हैं वैसे ही उपयोग यानी चैतन्य लक्षण और जड़ लक्षण ये एक नहीं हो सकते, उनमें विरोध है। यहां लिखा ही आगे देखो, जड़ और चैतन्य कभी भी एक नहीं हो सकते, वे दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न है। तो लक्षण सर्वथा भिन्न भिन्न है तो ये द्रव्य अपने अपने लक्षणों से युक्त है, वो द्रव्य भी कभी एक मेक नहीं होते। देखो ऐसा सिद्धांत है, दो जड़ लक्षण वाले द्रव्य तो एक मेक हो जावे कि नहीं हो जावे? दो परमाणु भले जुड़ जाते हैं परंतु वो एक मेक नहीं हो जाते, उनका अस्तित्व भिन्न भिन्न है, क्योंकि एक एक परमाणु एक एक द्रव्य है। एक परमाणु अगर दूसरे द्रव्य परमाणु रूप हो जावे, चार पांच दस परमाणु इकट्ठे होकर एक भिन्न द्रव्य हो जावे, तो परमाणुओं की जो अनंत अनंत संख्या है वो कायम नहीं रहेगी, घटते 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 चली जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता, कोई भी दो द्रव्य मिलकर एक द्रव्य नहीं होता। अनंत सिद्ध हो चुके अभी तक, और छोटी स्पेस में ना 45 लाख योजन में अनंत अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है, सब मिलकर एक हो जाते होंगे ना। अन्यमति कहते ना अनंत में विलीन हो गया, ज्योत में ज्योत मिल गई, ऐसी कोई ज्योत होगी वो उसमें मिल जाए। ये ज्योत तो पुद्गल है, हम कहेंगे नहीं ज्ञान ज्योति में ज्ञान ज्योति मिल जाती है, यानी अपना अस्तित्व तो मिट जाता होगा तो फिर सिद्ध होने में क्या फायदा। यहाँ तो हमारा प्रत्येक का अस्तित्व भिन्न है, हमारा बैंक बैलेंस भी भिन्न भिन्न है, घर भी भिन्न है, सब भिन्न है।
छोटे थे तभी हमारी ग्रैंड मदर ऐसे धर्म की बातें कर रही थी, तो कभी बोलते हैं कि फिर भगवान महावीर का ऐसा हुआ और सिद्ध हो गए, तो हम उनको पूछते थे तो फिर क्या हुआ, तो बोलते थे ज्योत में ज्योत
ज्योत में ज्योत मिल गई।
तो हमको पता नहीं था क्या ज्योत में ज्योत।
ये अन्य में भी ऐसा है, अनंत में विलीन हो गए। अरे वाह रे वाह, अपना अस्तित्व कौन खोना चाहेगा, और होता ही नहीं ऐसा। दो द्रव्य मिलकर दो जीव मिलकर भी एक हो जावे बड़ा कोई जीव, ऐसा नहीं होता। हर एक का अस्तित्व, क्योंकि सत ये द्रव्य का लक्षण है, जीव हो या परमाणु हो उसमें सत अस्तित्व वाला जो है, अस्तित्ववान द्रव्य है, हयाति है, सत्ता स्वरूप है, वो उसकी सत्ता कभी दूसरी सत्ता में मिल जाए ऐसे कभी तीन काल में नहीं होता। इसीलिए उसको उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत कहा है, और अपनी सत्ता भिन्न रखते हुए अपना परिणमन अपने में करे। ये कौन से परिणमन की यहां बात चल रही? उपयोग हो लक्षणम, उपयोग रूप जो उसका जानन देखन का कार्य चल रहा है वो द्रव्य अपने में अपने कारण से करता है। अभी कितने बज गए? हाँ जी बहन, घड़ी है ना आपके पास? हाँ 10:30 बज गए ना। हाँ तो घड़ी देखने से ज्ञान होगा क्या? नहीं हुआ। घड़ी से ज्ञान हुआ ना, ये ज्ञान की पर्याय जीव का लक्षण है ना, उपयोग लक्षण है, तो ज्ञान की पर्याय ज्ञान के अपने कारण से हुए। ये जीव स्वयं अपने स्वभाव से जानने का कार्य करता है और सामने उचित निमित्त होता है, उसकी चिंता मत करना। वो निमित्त नहीं आता तो कैसे जानते? अरे जब जानने की पर्याय की योग्यता है और सामने निमित्त न हो ऐसा तीन काल नहीं बन सकता, और हम नहीं घड़ी दिखाते तो जानने की कोई अन्य पर्याय की योग्यता है, क्या करे? हमें तो ऐसा ही लगता है सामने नहीं आया था निमित्त तब तक क्यों नहीं जाना, यानी अभी तक हमने ये क्यों नहीं जाने उपयोग लक्षण की बात हुँ? हमारे पास तो पुस्तक थी क्यों? क्योंकि हमारा निमित्त के ऊपर लक्ष्य जाता है। दोनों का समय एक है, यहां ज्ञान की योग्यता और सामने वैसा निमित्त, तो हमें ऐसा लगता है कि निमित्त ने ही ये कार्य किया है। परंतु ये ज्ञान की पर्याय रूप परिणमित कौन हुआ है? पुस्तक हमारी ज्ञान की पर्याय रूप परिणमित हुआ है क्या? ये पुद्गल शब्द तो जड़ है, वो जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता। ये घड़ी कुछ चेतन रूप नहीं होगी, हमको समझाया नहीं उसने। तो ज्ञान की पर्याय स्वयं जानने रूप परिणमित होती है, वो जीव द्रव्य का अपना कार्य है, वो अपने से होता है। तो हम जीव द्रव्य है, तो हमारी अनादि से लेकर अनंत काल की जो एक एक जानने की पर्याय कहो या प्रत्येक गुण की पर्याय, वो सुनिश्चित है। वो द्रव्य में स्वयं के कारण और उसके निश्चित समय पर स्वयं होती है। उसको करने धरने वाला या बदलने वाला कोई नहीं
है।
खचित है। और वो ज्ञान में जाना है केवल ज्ञानी ने, परंतु वो हमारे द्रव्य में है। ये प्रमेय तो गुण क्या बताता है कि वो जो सभी द्रव्यों में ऐसी शक्ति है कि ज्ञान में झलके। अभी मान लेते ये द्रव्य है, तो इसमें अनादि काल से अनंत काल की पर्याय निश्चित है कि नहीं है? वो द्रव्य के अपने कारण होती है क्या, किसी अन्य के कारण होती है? अभी ये दो जीव मान लेते, इसका ये यहां उसने पुरुषार्थ किया और सम्यक दर्शन किया, और अभी यहां इस समय कोई केवल ज्ञानी जान रहे कि वो इतने काल के बाद यहां सम्यक दर्शन करने वाला है। वो ज्ञान की योग्यता से जान रहे क्या? क्योंकि उन्होंने पूरे ही द्रव्य को जाना है ना। जब हम कहते द्रव्य को जाना, जैसे हम स्कूल में हमको महात्मा गांधी का चरित्र लिखना है, तो कहां से कहां तक लिखेंगे बेन? जन्म से मरण तक। तो भगवान ने द्रव्य को जाना, कैसे जानेंगे? अनादि से अनंत काल तक पूरा ही पर्यायों का समूह रूप जानेंगे। तो भगवान ने जाना है क्या कि यहां इस विशिष्ट समय पर सम्यक दर्शन होने वाला है? तो हमारा पुरुषार्थ पराधीन हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा पुरुषार्थ क्या रहा ऐसा कहते? तो यहां तक जाना है ना, और हम यहां पर है, तो हम तभी पुरुषार्थ करेंगे ऐसा कहते हैं। क्योंकि भगवान ने जाना है ना, तभी होना है। तो अभी क्या करना चाहते हैं? अभी मौज मजा करेंगे, व्यापार धंधा करेंगे, समझ में आया ना? यानी इसकी सर्वज्ञ पर भी श्रद्धा नहीं है। अरे परंतु ये जो अपने द्रव्य में उत्पन्न होने वाली पर्याय है, वो अपने स्वयं में अपने पुरुषार्थ से ही होगी। भगवान ने जाना है इसलिए होगी, तब मैं पुरुषार्थ करूंगा, या उन्होंने जाना तो मेरा पुरुषार्थ खलास हुआ, इसका अर्थ है उसका अभी तत्व का निर्णय ठीक नहीं हुआ है, बहुत उसमें कन्फ्यूजन चल रही है। और जब तक निशंक तत्व की प्रतीति नहीं होती है, तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती। तत्व निर्णय होते ही वो सहज उपयोग अपने आप को पकड़ लेता है, आत्मा की अनुभूति होती। उसके लिए और कोई अन्य पुरुषार्थ है ही नहीं है। तत्व का निर्णय करना यही पुरुषार्थ है। और उसमें जितनी क्लैरिटी होती चली जाएगी, निशंकता होती चली जाएगी, उतना हमारा निर्णय तक हम जल्दी पहुंचेंगे। तो क्या कहते हैं यहां कि वे दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न है। सर्वथा कह दिया हो, आप कहेंगे सर्वथा कहने से एकांतवाद हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो सम्यक एकांत है। दो द्रव्य सर्वथा भिन्न भिन्न है, तो हमने इसे सुना था शास्त्र में, सर्वथा कहते हैं तो एकांतवाद होता है। ये द्रव्य को सर्वथा नित्य मानना, ये एकांत है। सर्वथा अनित्य मानना, ये एकांत है। कैसा? मिथ्या एकांत है। परंतु दो द्रव्य सर्वथा भिन्न भिन्न है, ये जो हम जानते हैं मानते हैं, ये तो सम्यक एकांत है। किसी भी प्रकार से एक रूप नहीं होते, इसलिए हे जीव, अभी जीव को समझाते, हे जीव तू सब प्रकार से प्रसन्न हो। क्यों? अरे मैं तो अभी तक अनादि से स्वतंत्र ही हूं, किसी से मिला ही नहीं हूं, और मेरा लक्षण अबाधित है। शरीर के साथ संयोग होने पर भी उस लक्षण में कुछ भी खोट नहीं आई है। मेरा ऐसा स्वभाव है कि इसमें से अनंत काल तक केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती रहे तो भी स्वभाव कभी खूटे नहीं। क्योंकि स्वभाव उसी को कहते हैं जो असीमित होता है, अमर्याद होता है। अनंत पदार्थों को, अपने सहित अनंत पदार्थों को जाने ऐसे हमारी स्वयं की योग्यता है, ऐसे एक ज्ञान गुण की बात नहीं, ऐसा अनंत गुण है, वो अनंत गुणों में अनंत शक्ति है और ऐसे अनंत गुणों का समूह मैं स्वयं हूं। तो अपनी महानता भाषित होती है। तो कहते हैं हे जीव तू सब प्रकार से प्रसन्न हो। तो हमारी प्रसन्नता कब होती है? जब खाना पेट में चला जाता है, नींद अच्छी से उठते हैं, उठने पर भी प्रसन्न नहीं होते, चाय पीने तक जब प्रसन्नता थोड़ी बढ़ जाती है तो कहते अपना स्वरूप पहचान में आता है, ज्ञान में आता है, तो प्रसन्नता सहज हो जाती है। अपना चित्त उज्ज्वल करके, निर्मल करके, सावधान हो और स्वद्रव्य को ही यह मेरा है ऐसा अनुभव कर। सावधान करते हैं क्योंकि हम जैसे बेचेत पड़े हैं, कहाँ ये देह में अपनत्व करके हम जैसे बेहोश हो गए हैं, जैसे कोई मदिरा पीता है और उसको अपने आप की पहचान नहीं रह जाती, वैसे हम भी शरीर मैं हूं ऐसे मोह रूपी मदिरा पीकर उन्मत्त दशा हुई, पागल जैसी हो गई, बेहोश जैसी दशा हो गई है। इसलिए कहते सावधान हो और स्वद्रव्य को ही यह मेरा है या यह मैं हूं, मेरा भी नहीं, मेरा यानी दो बातें हो जाए, मैं और यह मेरा। तो स्वद्रव्य में कैसा जाना है? यह मैं हूं ऐसा अनुभव कर, ऐसा श्री गुरु का उपदेश है। श्री गुरु का यानी अभी हम कहेंगे समय सार में आचार्य श्री ने बताया, परंतु वो भी कहते ऐसा श्री गुरु ने कहा। ये देखो समय सार कहो या गोमट सार में भी बार बार ऐसा आता है कि ऐसे जिनेन्द्र देव ने बताया, कोई भी आचार्य ऐसा नहीं कहते मैं बता रहा हूं, किसी ज्ञानी ने ऐसा नहीं कहा कि ये मेरा मार्ग है। ये किसी का अपना मार्ग नहीं होता है। जब हम समाज में कहते ना ये कौन है, ये कांजी वाले, ये श्रीमद वाले, अरे यदि ज्ञानी ने अपना मार्ग चालू किया तो वो तो भगवान के मार्ग से विरुद्ध हो जाएंगे। तो वे भी कहते नहीं समय सार में हमने ये समय सार वाले आचार्य को पूछा कुमकुंद को कि आपने कहां से जाना, तो महावीर भगवान की वाणी हमने सुनी है, वो जो चली आई है परंपरा, परंपरा को उन्होंने कहा, वो तो डायरेक्ट साक्षात श्रीमंदर स्वामी को सुनकर आए थे, फिर भी परंपरा महावीर की बताई है, क्योंकि ये जो आगम ज्ञान है वो महावीर भगवान का हमारा शासन चल रहा है और उनकी परंपरा, क्योंकि वो परंपरा से छूट कर नहीं है, क्योंकि हम पूछते व्हाट इज अ प्रूफ, क्योंकि अभी वो विदेह में गए थे तो कैसे गए थे इस बाबत में भी लोगों को भ्रमणा होती। कोई कोई मानते हैं आहारक शरीर से गए थे, आपकी क्या राय है? वो आहारक शरीर से गए थे या वो सदेह गए थे, औदारिक शरीर से गए थे? ये जो मुनि है वो मुनि का शरीर सही गए थे, कोई कोई उत्तर शरीर बनाया था। अब कलाबेन क्या कहते, थोड़ा निर्णय करें ना, हम डिस्कस करेंगे उस पर। हाँ हाँ हाँ, आपका कहना है सदैव तो नहीं जा सकते, हाँ तो कैसे गए होंगे?
और आहार शरीर से वो जा
सकेगा क्या? आहार शरीर से जा सकते, हाँ 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 वी है, हाँ आपका मत ही हम जानना चाहते हैं, तो फिर हम बाद में वो कैसा गए थे उस पर निर्णय करेंगे। आप क्या कहते हैं नीतिबेन? वो सदैव वो मालूम ही नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। तो आप अच्छा है, तो जो सच है तो हम अभी डिस्कस करेंगे। शिल्पा जी आप क्या कहते हैं? मुनि के देह में ने सदेह गए थे, क्यों? हाँ चारण रिद्धि होती, फिर भी सदेह गए थे, हम किस किस बात पर से निर्णय कर सकते?
पता नहीं, निर्णय पता नहीं।
हाँ निर्णय पता, बहुत अच्छा है। हाँ
शिलालेख में उसका,
अच्छा आप कहते हैं शिलालेख में लिख दिया, अभी हम भी शिलालेख तैयार करेंगे, ताम्रपट करेंगे और ऐसा लिख देंगे वहाँ कि ये भी विदेह जाके आए, तो क्या आप सच मानेंगे? तो आप कहते नहीं वो शिलालेख जो है वो मुनियों ने लिखा है, वो तो सत्य महाव्रत के धारी थे, परंतु फिर भी आहारक शरीर से गए थे कि सदेह गए थे, ये तो हमको निर्णय करना पड़ेगा। हाँ हाँ, इसीलिए पता करेंगे ना, अभी हम जरूर। हाँ हाँ आप जस्ट सोचते हैं, देट इज व्हाट हाउ वी थिंक, अंजुबेन आपको कुछ कहना है?
मैं तो वही लेख पे, लेख पे से,
हाँ लेख पे से, हाँ बहुत अच्छा,
लेकिन वो समझ में नहीं आता सदैव कैसे।
हाँ हाँ बहुत अच्छा। आप प्रोफेसर साहब,
यदि उन्हें कोई जानने की जिज्ञासा या समाधान चाहिए होती तब तो वो यहाँ से उसको अपनी वृद्धि के उससे।
अच्छा अच्छा, देखो देखो हम, हाँ हाँ देखो, ये आहारक है कि नहीं उसका हम निर्णय करेंगे। आहारक शरीर किसको कहना ये पहले हम देखते हैं। देखो जिन जीवों ने यानी मुनियों ने ये जो आहारक और आहारक शरीर, ये नाम कर्म के दो नाम है, प्रकृति है, कर्म की प्रकृति है। आहारक शरीर नाम कर्म और आहारक अंगोपांग नाम कर्म। अभी हम मनुष्य है ना, हमको कौन सा नाम कर्म का उदय चल रहा है? औदारिक शरीर नाम कर्म और औदारिक अंगोपांग नाम कर्म। उसके उदय में यहाँ औदारिक शरीर की निर्मिति यानी वो परमाणु ग्रहण की ये शरीर रूप ढाला, ये बात चल रही। अब जिसको आहारक शरीर बनता है किसको बनेगा? जिन मुनियों ने आहारक शरीर नाम कर्म और आहारक अंगोपांग नाम कर्म प्रकृति का बंध किया है, वो विशिष्ट शुभ भाव में इसका बंध होता है। और इसका बंध तो सातवें और आठवें गुणस्थान वाले को होता है भाई। तो जिनके सत्ता में ये दो प्रकृति है, ऐसे जीव जब छठे गुणस्थान में आते हैं तब उसका उदय हो सकता है। कब? उनको तत्व में नहीं, सात तत्व में नहीं। अभी कोई कर्णानियोग का गणित है या कोई अन्य जो है, जैसे कितने ज्योतिषी विमान है उसका गणित क्या है, या अन्य भी कोई, उनको कोई ऐसे मन में प्रश्न उठा या कोई तीर्थ वंदना के भाव आ गए, जैसे मेरू के हम प्रदक्षिणा करें या मेरू पर्वत पर जाकर अकृत्रिम चैत्यालय उनका दर्शन करें, ऐसा उनके भाव आता है तो उनके मस्तक से आहारक शरीर की उत्पत्ति होती है। ये एक हाथ सफेद सप्तधातु रहित ऐसा शरीर उत्पन्न होता है, उसमें हड्डी बिड्डी कुछ नहीं होती है, और वो जैसे विक्रिया वाला शरीर होता है ना, वैसे उनका आहारक शरीर। मूल शरीर में तो आत्म प्रदेश है ही है, वो आहारक शरीर वहां जहां तीर्थंकर विराजमान है वहां तक पहुंचाते हैं, आत्म प्रदेश भी फैलते हैं वहां तक, और फिर वहां जाते ही उनका समाधान होता है और वापस मूल शरीर में आते हैं। उसका काल कितना है? जितना छठे गुणस्थान का अंतर्मूर्त है उससे छोटा आहारक शरीर का अंतर्मूर्त होगा। क्यों? क्योंकि वो जो शुभ भाव है वहां जाना है आना है, वो जो सारी क्रिया है उतने छोटे अंतर्मूर्त में होगी। किसके होती? हमने देखा छठवे गुणस्थानवर्ती मुनिराज को ये आहारक शरीर की उत्पत्ति होती है, वो अंतर्मूर्त तक ही टिकती है। और अभी हाँ अभी ये जो कुंद भगवान गए थे विदेह में कितने दिन रहे थे? अधिक ये आहारक शरीर अधिक हम मानते, ज्यादा क्यों नहीं टिकता? तो उनका वो सातवां गुणस्थान कैसे होगा?
यही मैं कह रहा था, बात पूरा नहीं हुआ था।
ना यदि हाँ ये आपका ये यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हो ना, इसलिए मैं बता रही हूँ आप कि उनके तो अभी क्या है, 8 दिन वहां रहे थे तो वे सदेह गए थे, चारण विधि तो उनके थी और उस सहित वहां गए थे, 8 दिन रहे थे, तो वहां की तो कितनी अवगाहना है, 500-500 धनुष ऊंचे और उनके सामने ये कैसे अंगुष्ठ इलायची जैसे। हाँ एलाचार्य भी नाम है ना उनका, इलायची जैसे दिख रहे थे, जैसे वे हमारे कुछ मूवीज में वगैरह दिखाते हैं ना छोटे छोटे कुछ। हाँ तो हाँ तो उन्होंने 8 दिन आहार किया कि नहीं किया? समोचरण में किसी को भूख नहीं लगती है ना, वो आहार होता है ना निहार होता है, ये सहज वैसे ही उसकी प्राकृतिक ऐसे ही उसकी महिमा होती है, निमित्त नैमित्तिक ऐसा संबंध होता है। 8 दिन रहे थे वहां, सब भगवान की वाणी सुनकर यहाँ आए थे और यहाँ ग्रंथों की रचना, प्रवचन सार आदि ग्रंथों की रचना उन्होंने उसमें से की थी। तो हमें ये निर्णय इस पर से ना, क्योंकि आहारक शरीर का काल अत्यंत थोड़ा है, छोटा अंतर्मूर्त है, और वहां ये 8 दिन रहे थे, इस पर से ये बात सिद्ध होती है। और वो सदैव गए थे ये तो मुनियों ने अन्य मुनियों ने लिख के रखा है दर्शन सार में। हाँ हाँ सदैव जा सकते हैं। उनकी वो रिद्धि होती है, रिद्धि होती है तप के द्वारा, ऐसी रिद्धि होती है। ऐसे भी स्टोरी आती है कि कोई देव आके उनको ले गए। हाँ वहाँ जो समोशरण में किसी के मन में कुछ ऐसा प्रश्न होगा और उसके उत्तर में हाँ ऐसे कोई मुनिराज बरस क्षेत्र में है तो आके यहाँ से ले गए थे। वो पोन्नूर से गए थे ना।
हाँ 2005 में, 2005 जो भी गए थे वो
संवत
49
में, 2005 तो अभी अभी 2000 साल पहले की बात है ना तभी। हाँ आप यानी महावीर के बाद आपको जो कुछ 2005 नहीं कहना है, 500 और कुछ। हाँ तो ये कहाँ से बातें निकली सभी?
गुरु का उपदेश।
हाँ गुरु का उपदेश है। हाँ नहीं कोई देव भी ले गए ऐसा भी आता है और अन्य कोई मुनि के साथ वो अन्य चारण रिद्धि मुनि आकर उनको, क्योंकि इनके भी रिद्धि थी न हो सकते हैं। हाँ अभी हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु ये बात ये श्रवण बेलवला के ऊपर पहाड़ पर भी यानी उसका वहां शिलालेख मिलता है। देखो अभी हम आगे बढ़ेंगे। जीव शरीर और द्रव्य कर्म एक आकाश प्रदेश में बंद रूप रहते हैं। एक जीव है उसके साथ अनंत कर्म परमाणु बंधी हुई अवस्था में है और वहीं पर अभी यहां तो लिखा नहीं मगर तेजस शरीर के भी अनंत अनंत परमाणु है और उसी प्रदेश में औदारिक शरीर के परमाणु भी है। हम यहां औदारिक की बात कर रहे हैं। मैं एक जीव हूं और उसमें कर्म अनंतानंत है, तेजस शरीर के परमाणु अनंतानंत है और औदारिक शरीर के परमाणु भी अनंतानंत, सबका मिलकर एक बंद एक स्कंद हमको दिख रहा है। उसमें तो हमने उस दिन बात की थी हरेक कर्म परमाणु के साथ, हरेक तेजस परमाणु के साथ और हरेक औदारिक परमाणु के साथ जो हमने जीवों की संख्या अनंत देखी थी उससे अनंत गुणे परमाणु जिसको हम विसरसोपचय कहते हैं वो स्निग्धत्व रुक्षत्व गुण के कारण बंधे हुए पाए जाते हैं। यानी कारमान का अपना विसरसोपचय अलग, तेजस का अपना विसरसोपचय अलग और औदारिक का अपना विसरसोपचय अलग। यानी कर्म का पुंज है ही है, उसके विसरसोपचय उससे अनंत अनंत गुणे, तेजस के परमाणु तो है ही है उसका विसरसोपचय और अनंत अनंत गुणा, औदारिक शरीर के परमाणु है उसका विसरसोपचय और अनंत गुणा, तो वैसे वो मनोवर्गणा के भी परमाणु उसका भी विसरसोपचय होगा, भाषा वर्गणा की भी अपना विसरसोपचय। तो इतने सारे कितने एक जीव के साथ कितने अनंत अनंत परमाणु बंधे हुए हैं। हमें तो दृश्य रूप से औदारिक शरीर दिख रहा है परंतु इसी स्पेस में हो हमारे परमाणु कुछ आजू बाजू हो गए वो औरा बिरा कुछ आता है ना, ये ऐसा नहीं। ये परमाणु सारे एक बंधन रूप से यहां पाए जाते हैं। तो ये जो है एक आकाश प्रदेश में बंद रूप रहते हैं, इसलिए उन बहुत से मिले हुए पदार्थों में से इतने अनंतानंत अन्य परमाणु हूं और मैं तो एक हूं, तो ये अनंतानंत को मैंने मैं मान लिया, कितनी भूल हो गई, मैं अकेला एक हूं और उसने ये अनंत मिलकर मैं हूं मान लिया। तो उन बहुत से मिले हुए पदार्थों में से एक जीव पदार्थ को अलग करने के लिए लिखा है, क्या लिखा है, जानने के लिए, अलग जानना है। कौन करेगा कार्य, अनंत करेंगे कि मैं करूंगा, ये अनंत परमाणु कुछ नहीं करने वाले, वो तो जड़ है, वो कुछ नहीं जानते, वो नहीं कहते कि जीव मेरा है, वो नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हारा हूं, वो जीव ही अपनी भूल से अनंत में यह मैं हूं मेरे है ऐसा जानता है। तो कहते इन जीव पदार्थ को अलग जानने के लिए इस सूत्र में जीव का लक्षण कहा गया है। बात ख्याल में आई, ये लक्षण जानना कितना कार्यकारी है कि लक्षण के द्वारा हमने अपने आप को पहचान लिया, कितना सरल है ना, ये बहुत सरल बात है, अपने आप को जानना बहुत सरल है। यदि सरल नहीं होती तो आज तक अनंत सिद्ध नहीं बनते। अनंतानंत सिद्धों ने ये जो इसी विधि से सिद्धत्व प्राप्त किया है, जो जो सिद्ध हुए वो पहले संसारी थे और संसारी अवस्था का अभाव करके ही वो सिद्ध हुए। ऐसा कोई नहीं जीव था कि वो बस ऑटोमेटिक सिद्ध ही अवस्था में था। जो जो सिद्ध हुए हैं वो पहले मिथ्यात्व दशा में थे, उसका अभाव करके समय दर्शन हुआ और फिर मुनि हुए और अरहंत बन के सिद्ध हो चुके। यही मेथड है, यही मार्ग है। कोई दूसरा, कोई एरोप्लेन से जाता है, कोई पानी में से, जहाज में से जाता है, कोई रेल से जाता है, इसे कोई अलग अलग मार्ग है ही नहीं है। यही एकमात्र मार्ग है कि जिसके द्वारा अनंत जीवों ने अपना कल्याण किया है। तो वो बात सरल है। बिल्कुल, एक मार्ग है, कोई अन्य अन्य मार्ग नहीं है। कोई ऐसा कहते कोई ज्ञान मार्ग होगा, कोई भक्ति मार्ग होगा, कोई योग मार्ग, यानी कोई ऐसे देह को कष्ट करने का कोई अलग, ऐसी बात नहीं है। कोई कहते ना ये तो निश्चय मोक्ष मार्ग है और ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ये सीधा जाता होगा और ऐसा चढ़कर कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कितना सरल है, जानना है केवल, अपने आप को अपने लक्षण द्वारा निश्चित करना है, उसके लिए क्या जरूरी है। हाँ बोलो। क्या 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 औरा औरा ये आरा औरा आभा क्या है? देखो अभी जैसे यहाँ कार्मान शरीर के परमाणु है, तेजस के परमाणु है, औदारिक के परमाणु है। अभी परमाणु के साथ कोई दूसरे परमाणु चिपके हुए वहां पाए जाएंगे, क्योंकि ये पूरे ही ऐसा पूरे फैले हुए ना, पूरे विश्व में अनंतानंत परमाणु है। देखो परमाणु की संख्या और उनके जो भेद अगर हम देखेंगे, 23 प्रकार की वर्गणाएं पाई जाती है। जीव तो उसमें से 5 ही प्रकार की वर्गणा ग्रहण करता है, मालूम है आपको? सिंगल सिंगल परमाणु को जीव कोई ग्रहण नहीं करता है। देखो परमाणु कितने पुद्गल इस विश्व में कैसे कैसे, एक तो सिंगल परमाणु वाले होते हैं, उसको एक प्रदेशी कहते हैं। प्रदेश यानी परमाणु, यहां प्रदेश यानी कितनी स्पेस व्याप्ता है, उसको प्रदेश नहीं कहा। पुद्गल के बारे में जब हम एक प्रदेशी और अनंत प्रदेशी कहते हैं, तो अनंत प्रदेशी का अर्थ होता है अनंत परमाणु का स्कंध। वो जगह कितना व्याप सकता है, एक प्रदेश में भी आ सकता है और असंख्यात प्रदेश भी रोक सकता है। मेरा प्रश्न है कोई ऐसा स्कंध होगा कि जो अनंत प्रदेश, आकाश के अनंत प्रदेश रोकने वाला कोई ऐसा स्कंध होगा कि नहीं होगा? नियति बेन, होना चाहिए, क्योंकि अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर ऐसे अनंत प्रदेश व्यापेंगे कि नहीं व्यापेंगे? शिल्पा जी, हाँ व्यापना चाहिए। हाँ तो लोकाकाश के थोड़ा बाहर चला जाएगा ना, लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेश ही है, और जो जितना पुद्गल है वो कहाँ पर स्थित है? लोकाकाश के अंदर। लोकाकाश के बाहर एक प्रदेश भी कोई बाहर नहीं जा सकता। तो अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंध हो तो भी लोकाकाश से, ये महास्कंद नाम का एक स्कंद पाया जाता है। महास्कंद क्या होता है? पूरा लोकाकाश जितना है, 343 घनराज, जो पूरा थ्री डायमेंशनल, उतना एक स्कंद है। उसमें तो कितने अनंत, मैक्सिमम नंबर ऑफ परमाणु तो उसी में पाए जाते हैं, फिर भी उसकी स्पेस कितनी व्यापी उसने? असंख्यात प्रदेश। बाहर जा ही नहीं सकता ना पुद्गल। तो ये हाँ आपका प्रश्न है वो क्या काम करता है? ये पुद्गल कुछ नहीं काम करता है, बस स्पर्श रस रूप गंध रूप से परिणमित होता है, जुड़ना और बिछुड़ना उसका कार्य है। वो महास्कंद में भी पुद्गल परमाणु जो उस एक स्कंद, एक ही स्कंद होता है, महास्कंद नाम का एक ही स्कंद होता है, उसमें भी परमाणु कभी ज्यादा कभी कम होते रहते हैं, फिर भी वो पूरा साइज उसका लोकाकाश इतना रहता है।
343
करोड़ नहीं, घनराज, 343 घनराज। तो हमने जो 23 वर्गणा की बात की थी, तो सिंगल एक एक परमाणु होता है उसको एक प्रदेशी कहते हैं, दो दो परमाणुओं का स्कंद उसको द्व्यनुक कहेंगे या द्विप्रदेशी कहेंगे, परंतु दो अणुओं का स्कंद समझना, कितनी स्पेस व्याप्ता है उसको अभी हम गौण करेंगे। त्रिअणुक वाला, चार अणुक वाला, पांच, कंटिन्यूअस एक एक परमाणु बढ़ते हुए फिर असंख्यात अणुओं का स्कंद, असंख्यात के भी जितने वेरिएशन से एक 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 बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये कल देखा था ना, जगन्य परिता संख्यात से लेकर उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात तक के एक एक परमाणु बढ़ते हुए सभी होंगे, ऐसे स्कंध। फिर अनंत शुरू हो जाएगा। जगन्य अनंत कौन सा देखा था हमने कल? जगन्य परिता अनंत, उतने परमाणुओं का स्कंध। फिर और एक प्रदेश बढ़ाओ, और एक बढ़ाओ, और एक बढ़ाओ, इस तरह से अनंत प्रदेशी स्कंध। फिर उसके बाद नंबर आता है औदारिक शरीर समझ, जो आहार वर्गणा जिसको कहते हैं। आहार वर्गणा का अर्थ है ऐसा स्कंध जिसमें उतने विशिष्ट नंबर ऑफ अनंतानंत परमाणु है। एक वर्गणा में अनंत कितने? अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग, इतने परमाणु जिस वर्गणा में है वो विशिष्ट जाति के, उसको आहार वर्गणा कहते हैं। ऐसी वर्गणा, अनंत वर्गणा जीव एक समय में ग्रहण करता है। एक वर्गणा में अनंत परमाणु और ऐसी अनंत परमाणु, ऐसी अनंत वर्गणा जीव एक समय में ग्रहण करता है। शरीर की भी बात चल रही है, अभी तो कर्म के ऊपर नहीं आए हैं। तो ये ऐसे आहार वर्गणा में भी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक बहुत अनंत भेद है, अब उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद ऐसी रेंज है कि जीव उसको ग्रहण नहीं करता, यानी उसको कोई जैसे उसको अग्रहण वर्गणा ही कह देते हैं। नहीं, अनंत परमाणुओं का स्कंध है, समूह है वो। तो बीच वाली जो वर्गणा है कोई जीव ग्रहण नहीं करता है, अभी उसका नंबर लास्ट में है। पहले आहार वर्गणा है, उसमें तीन जाति के होते हैं, जिससे औदारिक शरीर बनता है, जिससे वैक्रिय शरीर बनता है और जिसके आहारक शरीर बनता है। उसकी भी अपनी अपनी रेंज अलग है, कितने परमाणुओं की वर्गणा है। तो औदारिक की स्थूल है, फिर वैक्रिय की उससे सूक्ष्म है, आहारक की उससे सूक्ष्म है। उसका परिणमन सूक्ष्म है, परंतु उसमें परमाणुओं की संख्या और ज्यादा ज्यादा, यानी अनंत गुणे अनंत गुणे। तो अब ये हम ये बीच बीच वाले अग्रहण है उसको छोड़कर जीव कौन सी ग्रहण करता है, अपना समय भी होने को आया है। तो एक है आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा का लास्ट नंबर है, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्मण वर्गणा। उसके भी आगे बहुत सारे ध्रुव शून्य वर्गणा वगैरह 23 भेद पाए जाते हैं। ये परमाणुओं के यानी पुद्गलों की इतनी वैरायटी है और बिल्कुल साइंटिफिक है, कौन से वर्गणाओं से क्या क्या बातें बनती है। तो ऐसे ऐसे स्कंधों का वर्णन है। तो पुद्गल की कितनी ही रेंज है। देखो, इस विश्व में अनंत जीव है और प्रत्येक जीव हर समय में अनंत परमाणुओं को ग्रहण करता है, कार्मण के भी, तेजस के भी और औदारिक के भी। तो अभी तक इस जीव ने कितने परमाणुओं को लेकर छोड़ा है, परंतु फिर भी इस विश्व में ऐसे अनंत अनंत पद्गल परमाणु है कि जिसको किसी जीव ने अभी तक ग्रहण ही नहीं किया है, न छोड़ा है। क्योंकि जीवों से पूरा विश्व लोकाकाश ठसोठस भरा हुआ है, फिर भी ऐसे अनंत अनंत परमाणु है, हमें पता नहीं ना ये उसकी अनंतता का और उसको जानने वाले ज्ञान की अनंतता का। इसको जानने वाले केवल ज्ञानी है और जानकर बताया है, और शुद्ध ज्ञानियों ने उसको जानकर ग्रंथों में लिखा है। ये अपने घरों में ग्रंथ पढ़े ना, हम पूजा भी करते उसकी, हाँ हम बचपन से पूजा करते आए, फिर भी उसमें क्या लिखा है कभी जाना ही नहीं। अभी अपना समय पूरा हो गया, यहीं रुकते हैं, अभी हम बाकी बात दोपहर में करेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।